इंसान के जो अलग अलग जो एटीट्यूड है किसी भी काम के प्रति, किसी भी चीज के प्रति, जिस तरह उसके एटीट्यूड है उसके बेस पर अलग अलग लोगों को क्लासिफाई करने की कोशिश की जाती है। उससे हम अपने आप को भी एनालाइज कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि मैं किस कैटेगरी में हूं। बहुत खराब हूं तो बेटर होने की कोशिश करें, बेटर हो तो गुड हो तो बेस्ट होने की कोशिश करें। तो अपने आप को भी असेस करने के लिए हेल्प करता है जब हम समझ पाते हैं कि मेरा कैरेक्टर इनमें से कहां फिट बैठता है। जब भी हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं या कोई चीज जानते हैं उसका उद्देश्य हमेशा होना चाहिए खुद के लिए, न कि दूसरों के लिए। जनरली एक प्रॉब्लम होता है जब भी कोई बात हम सुनते हैं या हमें अच्छा लगता है फिर वो आगे जाकर बड़ा स्केरी डरावनी हो जाती है। डरावनी इसीलिए हो जाता है कि हम फट से दूसरों पर अप्लाई करने लग जाते हैं, दूसरों को उसमें जज करने लग जाते हैं। पर बातें उसके लिए नहीं था कि आपके पति के लिए ये मैसेज था क्या नहीं था, या पत्नी के लिए था कि नहीं। मैसेज सीधा आपके लिए था, पर हम बहुत जल्दी ही बॉल को दूसरे के गोल पर डालने की कोशिश करते हैं। और ये जो कभी कभी अच्छी चीजों का भी जो खराब रिजल्ट निकलता है वो इसीलिए कि हम हमेशा अपना बल अच्छी चीजें हैं तो ये सब मेरे लिए था, अब इसमें जो जो खराब खराब चीजें हैं जो तुम सुधर जाओ। ये जो तुम सुधर जाओ वाला सेंस है उससे कोई नहीं सुधरता है। तो ध्यान रखिए जो बोल रहा है या जो सुन रहे हैं मैसेज सबके लिए है, इंडिविजुअली सेल्फ के लिए होता है। तो अगर हम कुछ दिनों से इसकी चर्चा कर रहे हैं कि जो अलग अलग तरह के लोग जब वो कोई काम करते हैं, अच्छा बुरा जो भी काम करते हैं, उससे हम समझ में आता है कि व्यक्ति किस टाइप का है क्या है, तो इसका यूज करके दूसरों को जज करना खतरनाक अच्छा नहीं है। बेटर है कि, और हमारे शास्त्र कवि दूसरों को बताने के लिए नहीं लिखे हैं कि कोई पढ़े तो खुद को ठीक करे, अच्छा है तो और बेटर बनाए, खराब है तो बेटर बनाए खुद के लिए। इसीलिए ये जो अध्यात्म को अंग्रेजी में स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, स्पिरिट से सोल होता है, सेल्फ होता है, आत्मा का दूसरा मीनिंग होता है सेल्फ, निज अपना। तो जो कुछ चेंज मुझे करना है वो मैं अपने सेल्फ में करना है तो फिर अपने आप बाकी चीजें ठीक होगी। चलिए मेरे साथ मिलकर बोलिए, मुक्त संगो न हम वादी धृत्योत्साह समन्वित सिद्ध्या सिद्ध्योर्निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। ये श्लोक हम पिछले बार कर चुके हैं, जस्ट आपको कनेक्ट करने के लिए पिछले संडे से यहां के लिए तो रिपीट करते हैं। तो जो एजेंट्स होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, वो भी तीन तरह क्लासिफाइड हुए। पिछले बार हमने ये भी सुना था कि जो काम होता है वो भी तीन तरह से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। कोई भी काम, इवन आप हवन करते हैं या नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं या दुकान में स्टोर में जाकर के शॉपिंग करते हैं, उसको भी आप तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी चर्चा है कि जो एजेंट है, जो काम करता है, कोई भी काम, आप खाना बनाते हैं तो बनाने वाला, हवन करते हैं तो हवन करने वाला, बिजनेस करता है तो बिजनेसमैन, ऑफिस में काम करते हैं तो करने वाला, तीन तरह से क्लासिफाई करेंगे। तो पहला जो बेस्ट कैटेगरी के ही मुक्त संग, जिसमें अटैचमेंट नहीं है, वो काम करता है ड्यूटी समझ के, वो घर में रिलेशनशिप को निभाना हो, बच्चों का केयर करना हो या अपने स्पाउस की केयर करना हो, रिलेटिव के साथ संबंध रखना हो, पैसा कमाना हो या उसको खर्चना हो, कोई भी जीवन का काम वो करता है उतने ही पैशन के साथ, उतने ही जोश के साथ करता है, उतने ही प्यार से करता है जैसे कोई दूसरा करता है। पर फर्क सिर्फ इतना है उसमें अंदर मेंटल लेवल पर वो डिटैच्ड है, उससे कोई अटैचमेंट नहीं है। अगर रिजल्ट में कुछ अच्छा या बुरा मिलता है, एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं भी होता है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है मेंटल लेवल पर, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रिपेयर्ड है, उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इससे मुझे क्या मिलेगा। वो करता है इसीलिए कि इट्स माय ड्यूटी, आई हैव टू डू इट। अनहमवादी, इसकी चर्चा भी हमने की थी, जो ये नहीं बोलता है कि मैं हूं, मैंने किया, ये मेरा है, मेरे से रिलेटेड है, मेरे कहने पर हुआ, मेरे द्वारा हुआ, मैं कहीं इन्वॉल्व हूं, मैं नहीं होता, जो भी मैं और मेरा, वो बोलता नहीं है। ये भी हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी। एक तो अहंकार होता है जो बहुत डीप कॉन्शस में, हमारे अंदर सब कॉन्शस में छुपा रहता है, और बहुत सारे लोग, समझदार लोग ट्रेंड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो अहंकार को चैनलाइज करना जानते हैं। चैनलाइज करना मतलब इट नॉन द गुड सेंस इज बैड सेंस, मतलब उनको पता है कि वो इगोइस्टिक होने के बावजूद भी इस तरह के लैंग्वेज यूज करते हैं, इस तरह के बातें करते हैं, वो ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं, तो मैं तो बड़ा विनम्र हूं, सीधा साधा हूं, मेरे में कोई अहम नहीं है। पर उसके लिए वो जो रास्ता चुनते हैं वो ज्यादा ही हिपोक्रिटिक हो जाता है। जब वो आर्टिफिशियल रास्ता चुनते हैं, नेचुरली अपने ईगो को कम करने के बजाय वो ईगो को एक एस्थेटिक कवर देने की कोशिश करते हैं और वो छुपाते हैं, वो एक कैटेगरी हुआ। पर दूसरी कैटेगरी है कि जो हर चीज में खुद को, सिर्फ अंदर ईगो है ही नहीं है, वो दावा भी करता है कि ये मैंने किया, मेरे द्वारा, मेरा, मैं, मेरे से, वगैरह वगैरह यूज करता है। पर जो अच्छा काम करने वाला व्यक्ति, वो अपने क्रेडिट लेना या क्लेम करने के लिए पीछे रहता है, या कभी मन में उसका विचार नहीं आता कि ये मेरे कारण हुआ। धृति उत्साह समन्वयता, पर उसके धृति में, उसकी जो काम करने के लिए जो उसको जील है, जो एंथुसियाज्म है, उसमें कोई कम नहीं है। क्रेडिट मिलता है नहीं मिलता है, उसके कारण उसके जोश में कम या बहुत नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो काम करता है, क्योंकि उसको लगता है ये मेरी ड्यूटी है। सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकार, वो अचीव करे या ना करे, सक्सेसफुल हो जाए या ना हो जाए, दोनों परिस्थिति में वो निर्विकार रहता है। उसके मेंटल और फेशियल, फिजिकल एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आता। ये निर्विकार वर्ड मुझे याद आता है रामायण में, सुमंत्र का, वाल्मीकि रामायण में सुमंत्र कहते हैं, जो मंत्री है दशरथ के, जब राज्य में, कोर्ट में डिसाइड हुआ कि राम को युवराज बनाना है, क्राउन प्रिंस बनाना है, तो सुमंत्र को भेजा गया कि राम को मैसेज भेजो कि कल सुबह उनका राज्याभिषेक होगा, कोरोनेशन होगा, और वो तैयार रहे रात को। सुमंत्र ये मैसेज देने गए राम को, देकर के आए, और उसी रात को बड़ी सारी घटनाएं हो गई। कई कई को पता चला, दशरथ से उन्होंने रूठने लगे, पुराने वर मांगने लगे, तो दशरथ तो अब क्या करें, कैसे अपने प्रिय, इतने प्यारे बेटे को बोले कि नहीं भाई, कल सुबह जो तुम्हारा कोरोनेशन था वो सिर्फ कैंसिल ही नहीं हुआ, अब तुम्हें 14 साल के लिए जंगल जाना होगा, जंगली लोगों की तरह रहना होगा, किसी तरह का सिविलाइज्ड जो खाना पीना कपड़ा आप यूज भी नहीं कर सकते हो, मैं कैसे बताऊं, वो बेहोश पड़े रहे। तो कैकेयी ने अगेन सुमंत्र को भी, सुमंत्र फिर राम के पास गया उसी रात को, वही समाचार देने के लिए कि आपको कैकेयी के भवन में जाना है। तो राम जब पहुंचे, दशरथ बेहोश थे, कैकेयी रूठी हुई थी, उन्होंने पूछा पिता को, पिताजी बोलने से बोल नहीं सके, बार बार बेहोश होते थे, वापस आते थे, बेहोश आते थे। कैकेयी ने सुनाया कि तुम्हारे पापा से मैंने ये तीन चीजें मांगी है, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे जगह मेरा बेटा भरत राजा होगा, तुम जंगल जाओगे, खाली जंगल नहीं जाओगे, 14 साल तक जंगल में रहोगे, खाली जंगल में नहीं रहोगे, किसी भी सिविलाइज्ड इंसान जो कुछ भोगता है वो तुम नहीं भोग सकते हो, कोई कपड़े नहीं पहन सकते, वो जंगल के छाल कपड़े के बार्क, वो पेड़ की जो बार्क होता है उसको आप पहनोगे, खाना पीना कोई पका हुआ खाना जो शहरी लोग सिटीजन खाते हैं वो नहीं खा सकते, वो फल मूल खा सकते हो, जंगली की तरह रहना पड़ेगा। तो सुमंत्र बोलते हैं कि मैंने दोनों परिस्थिति में राम को देखा, राम के सकल को देखा। जब मैंने उनको ये इनविटेशन देने गया था कि सुबह आपका कोरोनेशन होने वाला है, आप प्रिंस क्राउन बनेंगे, तो भी राम के सकल में बिल्कुल वही एक्सप्रेशन था, वही भाव था जो कैकेयी के ये निवेदन करने बाद के कि तुम्हें जंगल जाना है, बिल्कुल वही मुख विकार था। विकार जो फिजिकल या मेंटल जो स्टेट में जो चेंज होता है एक्सप्रेशन में, सिद्धि और असिद्धि में, अच्छे और बुरे स्थिति में भी जो अंदर और बाहर से एक जैसा रहता है, कूल एंड काम रहता है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं, ऐसा काम करने वाला व्यक्ति सात्विक कर्ता कहलाता है, द बेस्ट टाइप ऑफ एजेंट कहलाता है। एजेंट मतलब यहां काम का, जो काम करने वाला व्यक्ति। दूसरा जो थोड़ा मीडियम लेवल का है वो कौन है? रागी कर्म फल प्रेप्सुर, लुब्धो हिंसात्मको शुचिहि, हर्ष शोकान्वित कर्ता, राजस परिकीर्तितः। ये सेकेंड कैटेगरी के लोग होते हैं जो काम करते हैं। अगेन जब हम काम कहते हैं वो आपका बैकयार्ड का काम हो, घर का काम हो, कम्युनिटी का काम हो, देश का काम हो, कोई भी स्वार्थ के लिए हो, परार्थ के लिए हो, कोई भी हो। रागी है, पैशनेट है, उसका अपना इंटरेस्ट है, जहां इंटरेस्ट है वहीं करता है, जहां नहीं है भाग जाता है, बहाना बना देता है। अब इंटरेस्ट हमेशा पैसे की या नाम की नहीं होती है, बहुत तरह के इंटरेस्ट होते हैं। इवन कम्युनिटी सर्विस भी, सोशल सर्विस भी करते हैं तो कुछ ना कुछ एक इंटरेस्ट रहता है। हमारे बच्चों को आप देखेंगे, माँ कहे कि बेटे जरा हेल्प कर दो बर्तन मांजने में, वो ये मेरा काम नहीं है, पापा को बोल दो। और आपका बेटा अगर स्कूल में कोई वॉलंटियरिंग का काम पड़े, कम्युनिटी में कोई वॉलंटियरिंग का काम करे, 15 घंटा काम करने को तैयार होता है, बड़े एंजॉय करता है, माँ बाप बड़े खुश होते हैं, देखो बेटा या बेटी कितना काम कर। उसी बेटा बेटी को घर में थोड़ा काम करने बता दो, चलो भाई बैकयार्ड में थोड़ा मिट्टी खोद लो, चलो खाने बनाने में थोड़ा हेल्प कर दो, हाथ नहीं लगने देते। बच्चा बड़ा अच्छा है बाहर, घर में नहीं करता, क्यों? वो सेंस है, वो सेंस है कि वहां एक रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। लोग कहते हैं देखो कितना अच्छा बेटा है आपका, बेटे को कहते हैं बेटा तुम बड़े अच्छे हो, बर्तन मांजने पर कौन बोलेगा तुम अच्छा हो? वो माँ बोलेगी तो उसे क्या फर्क पड़ता है, तो रोज वैसे ही बोलती है बेटा तू अच्छा है। घर में 4-5 मेहमान हो तब बोल दो तो हो सकता है कर भी ले। तो इंटरेस्ट हमेशा कोई बड़ा नहीं होता है, वो सबकॉन्शियस में बड़ी छोटी छोटी चीजें काम करती है जो हमारे इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करता है। तो जहां कुछ मिलने का रहता है, मिलने का अर्थ में कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा रिकॉग्नाइजेशन भी हो सकता है, तो फिर वो करने के लिए हम चाहते हैं। मोस्ट ऑफ हम आम आदमी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखे, अच्छे से अच्छा काम भी करते हैं, कुछ नहीं तो इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा काम कर दिया और वो बड़े प्यार से बड़े जोर से मुझे थैंक्स कहेगा, हक करेगा, कहेगा आप मेरे लिए बहुत कुछ हो। अगर उससे थोड़ा कम बहुत हो जाता है तो अंदर से हम थोड़ा दुखी हो जाते हैं, देखो मैंने उसको हेल्प किया, थैंक्स भी बोला, इतना सूखा सूखा सा थैंक्स है, पता नहीं आजकल के जमाना कैसे बदल गया है। जमाना ठीक ठाक है, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन तुम्हारे काम से कुछ जरूरत से ज्यादा है। तो ये जो कुछ जो बिना किसी राग के, पैशन के, इंटरेस्ट के हम नहीं करते हैं, कर्मफल प्रेप्सु, जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट की हमें पूरी की पूरी इच्छा है, हमें रिजल्ट वैसे ही मिलना चाहिए जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, अगर नहीं मिला तो हम दुखी हैं। और ऐसा कोई है हमारे में से कि जो कोई काम करे वो सेल्फलेस करे या सेल्फिश वाला काम करे, सोसाइटी के लिए करे वा इंडिविजुअल का लिए करे, करे रिजल्ट ठीक ना मिले वो दुखी ना हो, काम बहुत अलग बात है। तो वे रजोगुण का, वो सेकेंड लेवल के व्यक्ति का लक्षण होते हैं, लुब्ध। और उसी सेकेंड कैटेगरी के व्यक्ति थोड़ा और ज्यादा थर्ड कैटेगरी की ओर मूव करने लगे तो थोड़ा लालची होता है, इंटरेस्ट थोड़ा होना नेचुरल है, 10% आप कह सकते हैं कि थोड़ी गड़बड़ी है, पर लालच आ जाता है। फिर ऐसे ही लोगों में 60% खराब की ओर आने लग गया है, कोई लालच है, कोई ग्रीड है, कुछ मोटा फायदा चाहिए, किसी भी तरह का पावर चाहिए, पैसा चाहिए, थोड़ा ज्यादा रिकॉग्न, थैंक्स से काम नहीं चलने वाला, मुस्कुरा करके अच्छा बच्चा बोलने से काम नहीं चलने वाला, उससे थोड़ा मोटा कुछ चाहिए, बड़ा कुछ चाहिए, उससे मुझे क्या मिलेगा। ये लालच जक्ष के साथ जब हम काम करते हैं तो फिर वो सेकंड कैटेगरी के व्यक्ति होता है। और जब आप लालच में आ जाते हैं कुछ भी काम को करने के लिए, नेचुरली उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है तो उसकी वो फिर हिंसा में कन्वर्ट होता है, फिर हम वायलेंट होने लगते हैं। अगर वो हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ, रिजल्ट पूरा नहीं मिला, हम सिर्फ वायलेंट होते हैं। और वो जो वायलेंट होते हैं, जरूरी नहीं कि जिसके कारण हुआ हम सारा गुस्सा वहां ही निकालते हैं, हो सकता है हम इतने पावरफुल नहीं है, ऑफिस में हमें कोई एक्सपेक्टेशन था प्रमोशन का, नहीं हुआ, हमारे साथी का हो गया, बॉस का आप क्या बिगाड़ देंगे, बॉस आपको नौकरी से निकाल देगा, घर आए बीवी पर सारा गुस्सा निकाल दिया, बच्चों पर निकाल दिया सारा गुस्सा, बच्चों पर निकाल दिया। तो वो जो वायलेंस नेचर है, जरूरी नहीं कि हम वहीं निकालते हैं जहां हमें, जहां हमारा एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ, हम और कोई अपने से जो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है सारा गुस्सा वहां निकाल देते हैं, सारे वायलेंस वहीं निकालने लग जाते हैं। पर हिंसा होती है हमारे से जब हम लालच के साथ ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ काम करने लगते हैं, तो फिर खुद को या दूसरों को हर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ हमसे हो जाता है। और खाली इतना नहीं, जरूरत पड़ने पर फिर हम अशुचि हो जाते हैं। अशुचि का मतलब जहां इम्प्योरिटी आने लग जाती है। ये प्योरिटी क्या चीज है? सफाई। सफाई क्या चीज है? मन की सफाई नहीं आती है, मन अब धुंधला होने लगता है, गंदा होने लगता है, फिर हम पॉलिटिक्स खेलने लगते हैं, फिर हम मैनिपुलेट करने लगते हैं, फिर हम करप्शन करने लगते हैं, जहां जैसा होना चाहिए रास्ता सही ना चुन के गलत रास्ता चुनते हैं। यही है इम्प्यूरिटी, यही है मन की कमजोरी। प्रॉब्लम है कि हम घर में जब से पैदा हुए हैं और बड़े होने तक हमें यह जरूर सिखाया जाता है क्लीनलीनेस के बारे में। भारत में तो आजकल बड़ा मूवमेंट चल रहा है स्वच्छता अभियान, पर वो जो स्वच्छता अभियान हम फिजिकली बहुत जोर देते हैं, शरीर साफ रहे, कपड़े साफ रहे, घर साफ रहे, आसपास साफ रहे, ये जरूरी है, ये पहला स्टेप है, इसी को सबसे पहले ही करना चाहिए, क्योंकि जब आपकी आसपास सफाई नहीं है तो अंदर कहां से सफाई होगी। पर यहीं पर अगर रुक जाए तो जिंदगी में फिर वो समस्या समाधान नहीं होता, प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं मिलता। अंदर की सफाई जो हमें कोई स्कूल में नहीं बताया जाता है, घर में माँ बाप नहीं बताते हैं, वो आपको किसी धर्मशास्त्र में मिलता है। अंदर की सफाई मतलब मन साफ हो, क्लीन हो। ये मन की सफाई करना बड़ी जरूरी होता है अगर हम सुखी रहना चाहते हैं, अच्छा अच्छा बनना। देवियों सज्जनों एक चीज जरूर ध्यान रखिए, अच्छा बनना कोई एहसान करना नहीं होता है किसी पर। अच्छा बनना बड़ा स्मार्टनेस होता है। टू बी कि गुड मैन और वोमैन इज ए स्मार्ट डिसीजन। ये किसी पर एहसान नहीं करते। जितना हम अच्छे होते हैं, अच्छे इन द सेंस मेंटली, जितना हम क्लीन होते हैं उतना हमारा व्यवहार अपने आप अच्छा होने लगता है। जितना हम मेंटली क्लीन होंगे उतना हमारे लिए अच्छा होता है। हम उतने ज्यादा खुश रहते हैं, उतने ज्यादा सुखी रहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स करता है, अंदर बहुत सारा दुनिया भर के कंस्पिरेसी पालता है, करता है, वो कितना भी सक्सेसफुल हो जाए एक्सटर्नल वर्ल्ड में, वो अंदर से बहुत दुखी आत्मा है। नींद की गोली खाकर सोता होगा, बीपी के लिए भी दवा, 500 तरह के दुखी रहता होगा। स्वाभाविक है, आपका सुख सिर्फ एक्सटर्नल चीजों से नहीं मिलता, आप खुश नहीं होते हैं। मन साफ होना जरूरी है, और वो जो मन की सफाई, वही आप जिसको हम मोरलिटी या एथिक्स कहते हैं, वो सब मन की सफाई के लिए होती है। ऑनेस्ट होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, पेश जो भी चीजें आप जानते हैं धर्म के लक्षण में वगैरह वगैरह। पर जब आप ग्रीड के साथ, लालच के साथ काम करते हैं तो वायलेंस अपने आप अंदर आने लगता है। क्योंकि जब भी आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना किसी रूप में निकलेगा, और फिर उस चीज को पाने के लिए जो दोबारा ट्राई करेंगे तो आप कुछ ना कुछ हम गड़बड़ करेंगे, जिसको आप कहते हैं इट्स करप्शन ऑफ माइंड। माइंड करप्ट कर देते हैं। जो करप्ट माइंड है वो सेकेंड लेवल के कर्ता में दिखता है। हर्ष शोकान्वित नेचुरली, उसका जो ऐसा व्यक्ति रिजल्ट अच्छा हो जाए खुशी से उछलता है, और रिजल्ट खराब नहीं हुआ दुखी मिलता है। हर्ष और शोक से जुड़ा रहता है। जो एक्सपेक्टेड है वो हो गया तो बहुत खुश है, पार्टी देता है, और जो अनएक्सपेक्टेड खराब हो गया, जो एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो फिर दुखी हो जाता है, टूट जाता है। देवियों सज्जनों ध्यान रखिए, बैलेंस्ड लाइफ रहने जिसका होता है वो लंबा जीता है और खुश जीता है। बैलेंस्ड लाइफ हर चीज में, वो खाने में हो, पीने में हो, सोने में हो, चलने में हो, फिरने में हो, पर लास्ट और जो इंटरनल बात है वो है कि सुख और दुख में भी जो बैलेंस्ड रहता है। खुशी में ओवर रिएक्ट जिसका नहीं आता, ओवर रिएक्शन नहीं आता, वो दुख में भी ओवर रिएक्शन नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि हम आप लोग करते हैं या हम करते हैं, ये हमारा अंदर का बनावट हमने ऐसे बना रखा होता है, वो हो जाता है। तो उसको विथ प्रॉपर अवेयरनेस हमें उसको कंट्रोल करने की जरूरत होती है, बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए। कि जब बहुत खुशी आए, और वही मौका होता है, बैलेंस्ड हम कब कर सकते हैं, दुख में नहीं कर सकते हैं। जब हमारे ऊपर बहुत सारी विपत्तियां आती हो, संकट आता हो, तब लाइफ बैलेंस्ड नहीं हो पाता है। बैलेंस तो आप तब आप प्रैक्टिस करते हैं जब आपके पास सब अच्छा हो रहा होता है, तब अगर हमने उसको कंट्रोल किया। अगर बहुत कुछ अच्छा हो रहा है तो ये सब प्रभु की कृपा से है, दूसरों की मदद से हो रहा है, मैं इतना ज्यादा उसके लिए नहीं हूं। जब हम भाव कल्टीवेट करते हैं उस तरह के सेंस, उस कर्तृत्व भाव को, जैसे कहा अहम, मैं ही हूं, ये मैंपन को जितना हम कम करेंगे, जब हमारे साथ सब अच्छा हो रहा है तो जब दुख आएगा तो भी वो अपने आप बैलेंस्ड होता जाएगा। दुख में अगर सुख में आप, अच्छा ये एक स्वाभाविक नेचर है, जो व्यक्ति सुख में जितना ज्यादा उछलता है, सुख और दुख स्प्रिंग की तरह होते हैं, यकीन मानिए दुख में भी उतने ही ज्यादा वो नीचे गिरता है, डिप्रेशन में जाता है। 5 लोगों को सेम प्रॉब्लम होते हैं, मान लीजिए 5 लोगों को ऑफिस से, कंपनी से निकाल दिया, 5ों लोगों के पास आप 2 महीने के बाद घर में जाएंगे, 5 तरह के रिजल्ट मिलेगा। कोई बिस्तर पकड़ लिया होगा, कोई दूसरा जॉब पकड़ लिया, कहीं दूसरे जॉब में चला गया होगा, कोई बेड में पड़ा होगा, कोई दूसरा जब पकड़ लिया होगा, कोई छोटा मोटा काम कर रहा होगा, फ्यूचर प्लानिंग कर रहा होगा, कोई अपना लाइन ही चेंज कर दिया होगा, बिस्तर पकड़ लिया वो व्यक्ति जो जब नौकरी मिला था तब इतना खुश होता था, उछल उछल के ईगो के साथ भटकता था, सारे दुनिया भर को जो उनसे छोटे हैं छोटे नजर से देखता था, अब जब चला गया अब ईगो को बहुत, क्योंकि ये इसकी फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ईगो। आपके मेरे पास कुछ आया, मैं बहुत ज्यादा दिखाने क्यों लग गया, क्योंकि मैं देखता हूं कुछ लोग मुझे देख के जले, उनका एहसास हो कि मैं तुमसे बड़ा हूं, ये ईगो को सेटिस, जितना ईगो बड़ा होगा, जब बड़ा चीज टूटता है ना जी दुख ज्यादा होता है। आपके घर में साइकिल हो और साइकिल टूट जाए कितना दुख होगा, और कार हो कार टूट जाए तो उससे ज्यादा दुख होगा ना, क्योंकि कार उससे ज्यादा महंगा है, और अगर महंगी कार हो तो दुख थोड़ा और ज्यादा होगा, अगर बिल्कुल नई नई कार हो तो और ज्यादा होगा ना। ईगो का भी वही प्रॉब्लम है देवियों सज्जनों, छोटा ईगो होगा तो दुख कम होगा, उसकी टूटने की आवाज कम होगी दुख में, ईगो बड़ा होगा टूटने का आवाज ज्यादा होगा, डिप्रेशन में फट से चले जाएंगे। देवियों सज्जनों, आम आदमी जनरली इस मिडिल, उसको मिडिल क्लास भी कहते हैं वैसे भी, गीता भी इसी को मिडिल ग्रुप में ही रखता है क्लास में, उसके कैटेगरी अलग अलग हो सकता है, इस टाइप के लोग राजस राजोगुण उनमें ज्यादा होता है, राजसिक वृत्ति वाले होते हैं। तीसरा कैटेगरी, आयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। तीनों कैटेगरी में जो सबसे लोअर कैटेगरी में आता है उसको गीता की भाषा में तमोगुणी कहा जाता है, जिसमें तमोगुण ज्यादा बढ़ गया है, वो कैसा एजेंट होता है, कैसा डूअर होता है, काम करने वाला, अयुक्त अनस्टडी। आज आया हवन जी, बड़ा अच्छा लगता है हवन जी, तुम्हें भी हवन करूंगा जी करो। तीन दिन हवन किया, उधर देखा रोड में काम चल रहा है, वॉलंटियर, ये हवन बेकार चीज है, मुझे तो ये रोड व मरम्मत वाला काम अच्छा लगता है, हमेशा वो चेंज कर देता है, अनस्टडी है माइंड, इतना फ्लक्चुएट करता है, इतना ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, कभी भी वो कुछ भी छोड़ सकता है, ट्रस्टवर्थी बिल्कुल ही नहीं है। प्राकृत, बड़ा प्राकृत का रियल मीनिंग होता है जो रिफाइंड नहीं है, जिसको आप कहते हैं थोड़ा सिविलाइज्ड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, बिल्कुल रॉ है, वो भारत की भाषा में कहते हैं गंवार है ना, बल्गर है, उसकी व्यवहार में, एटीट्यूड में, भाषा में, उसके काम करने के तरीके में, वो रिफाइननेस नहीं है। स्तब्ध, बड़ा स्टब्बर्न है, जो सोच लिया तो वही सही है, उसके वाला दुनिया में और कुछ भी सही नहीं है। अगर शाम को सोना अच्छा है, कहीं सोन के आ गया तो शाम को ही सब सो जाओ भाई, तब तो वैसे ये ज्यादा दिन नहीं चलता, चार पांच दिन में फिर बदल जाता है, फिर कहीं सुनकर आ गया जी मिडनाइट में सोना बड़ा अच्छा होता है तो अगले दिन से जगा रहेगा। अच्छा, ये बड़ी बातें, ज्यादातर बातें हम लोग करते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड चीजें होती है, जब हम कुछ बीमार होते हैं, कुछ होते हैं, कहीं से कुछ सुनकर आ गए, फिर हमने शुरू कर दिया, एक हफ्ते तक शुरू कर दिया, फिर उसमें एक दो हफ्ते से फिर ज्यादा नहीं चलता, फिर उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसे करो, वो भी शुरू कर दिया, तो बड़े जल्दी बदल देते हैं। और कोई भी चीज में अननेसेसरी ज्यादा स्टबर्न बने रहते हैं, और शठ डिसाइटफुल, ठगी करता है, झूठ बोलता है, काम को खराब को अच्छा, अच्छा को खराब बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता है, शट है, निष्कृतिक प्रॉपर मेलिशियस है, कुछ भी किसी भी तरह के डिसऑनेस्टी के किसी भी हद तक जा सकता है, अलस है, बड़ा लेजी है, दूसरों से काम कराना पसंद करता है, खुद से नहीं है, और विषादी। जब देखो मुंह लटका के मिलेगा, दुखी मिलेगा। लाइफ में अच्छा हो तो भी दुखी, कैसे हो? ठीक है। क्यों ठीक है भाई, सब तो अच्छा हो गया, आपके बच्चे सेटल हो गए, घर, हाँ ठीक है। दुखी इसीलिए कि हो सकता है चाय आज ठीक से नहीं मिला तो आज दिन भर खराब चला गया। दुखी इसीलिए भी हो सकता है कि डॉक्टर के पास गया था, एक घंटे की जगह चार घंटे लग गया। बस दुख, मतलब दुखी होने के लिए उसको एक्सक्यूज चाहिए नहीं, वो एक्सक्यूज ढूंढ लेता है। और मत सोचिए कि ऐसे लोग बड़े रेयर होते हैं, कहीं किसी रेगिस्तान में मिलते हैं, वो आपके घरों में भी मिल जाते होंगे, आसपास में भी मिल जाते होंगे, दुखी आत्माएं जो हर चीज में दुखी मिलेंगे। और बड़े मजेदार है, दीर्घ सूत्री, ये इंडियन गवर्नमेंट में ऐसे लोग बहुत मिलते हैं, जो फाइल दबा के बैठते हैं ना, नेता लोग दीर्घ सूत्री समझते हैं, जो काम को लंबा खींचता है, छोटा काम या बड़ा काम, काम है करना है तो अभी करो, शुभस्य शीघ्रम। वो हिंदी में कहावत है ना, कल करो जो आज, आज करो तो अब। पर इस टाइप के लोग आपको अलग लॉजिक देंगे, क्या जल्दी पड़ी है, ठीक है करेंगे, रख दो कर लेंगे। पांच दिन से होम डिपो से वो प्लांट लाकर रखा है, इसको जरा बैकयार्ड में लगा दो, लगा देंगे, बारिश हो जाने दो, थोड़ा मिट्टी भिगाने दो, लगा देंगे, तो बारिश भी तो हो गई, लगा दो, बस लगा देते हैं, कल कर देंगे, कल फ्री हो जाऊंगा, कल कर देंगे। फिर 15 दिन हो गया, गर्मी खत्म, बीच में आ गया, अब तो थोड़ी देर के बाद ठंड भी आ जाएगा, तो लगा तो दो। दीर्घ सूत्रिता, ये जो प्रोक्रास्टिनेटिंग, किसी चीज को लंबा खींचने का, आपके काम करने वाले के जगह भी आपको बहुत लोग मिलेंगे जो 10 मिनट के काम को एक घंटे तक करेंगे, एक घंटे के काम को दिन भर लगा के करेंगे, आज के काम को कल करेंगे, ऐसे लोग थर्ड कैटेगरी में आते हैं। वो आपके घर में भी हो सकते हैं, ऑफिस में भी हो सकते हैं। और इस टाइप के लोग तमोगुणी होते हैं, वर्स्ट कैटेगरी के होते हैं काम करने के मामले में। अगला देखिए, बुद्धेर भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं श्रुणो प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। ये धनंजय अर्जुन, ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया, ऐसे बुद्धि का भी जो इंटेलेक्ट है और जो धृति आपके अंदर, वो जो होल्डिंग पावर है, किसी चीज को होल्ड करने की जो मेंटल एबिलिटी है, इसको भी आप कैटेगराइज कर सकते हो तीन तरीके से। जनरली एक मिसपरसेप्शन क्या है, हम कहते हैं अगर कोई खराब काम करता है, गलत डिसीजन लेता है, हम कहते हैं इसकी बुद्धि ठीक नहीं है, जो अच्छा डिसीजन लेता है ये अच्छा इंटेलिजेंट है। कृष्ण कहते हैं नहीं, ये इंटेलिजेंट हो जाने से ही काम अच्छा हो जाएगा, नहीं है। इंटेलिजेंट भी तीन तरह का होता है, मतलब कोई इंटेलिजेंट भी होकर भी खराब कैटेगरी में आएगा, अच्छे कैटेगरी में भी आ सकता है, बीच के कैटेगरी में भी आ सकता है, तो इसमें भी क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले देखते हैं कि जो इंटेलिजेंट के जो सबसे बेस्ट कैटेगरी क्या होती है, इंटेलिजेंट का काम क्या है, आपकी डिस्क्रिमिनेटिव पावर होता है, ये जो डिस्टिंग्विश करता है, अलग करता है। सामने अगर चीज पड़ा है, आप कहीं खाने के लिए गए, चार तरह की रोटियां रखी हुई है, और आप चुनते हैं बफे में, आप चुनते हैं, और हर व्यक्ति अपने ढंग से चुनता है और उसकी क्वांटिटी भी अपने ढंग से चुनता है, कौन सा खाना खाना है वो भी अपने ढंग से चुनता है, उसकी बुद्धि के बेस पर। चार बीमार आदमी और चार हेल्दी आदमी को ले लीजिए, खाना 8-10 तरह के लगा दीजिए, चार बीमार आदमी एक ही टाइप के बीमार, एक ही एज के, वो जो चूज करेंगे अलग अलग होगा। हेल्दी लोगों के लिए भी वही खाना रखिए, चूज करेंगे तो अलग अलग होगा। क्यों? सबका इंटेलेक्चुअल लेवल अलग अलग नहीं है, सारे तो IIT से निकले हुए हैं, चारों के चारों जी। बोले भारत वालों के लिए थोड़ा IIT थोड़ा क्रेज है, इसीलिए बोल दिया। इसका मतलब इंटेलेक्ट उनका अच्छा है, उसमें आप डाउट नहीं कर सकते, इंटेलेक्चुअली तो अच्छे होंगे, तभी तो IQ उनका बेटर होगा। पर तब भी अलग अलग क्यों चुनते हैं? उसमें भी क्लासिफिकेशन होता है। क्या बोले? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्ये भयावहे बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। वो बुद्धि, वो जो इंटेलेक्ट आपकी है, वो हायर लेवल की मानी जाएगी, जो हर चीज को एज इट इज डिस्क्रिमिनेट कर दे, जो जैसा है उसको उसी रूप में समझ जाए। जरूरी नहीं कि उसके लिए वो साइंस पढ़ा हुआ हो, जरूरी नहीं कि वो बहुत सारे बुक्स पढ़ा हुआ हो, जो एजुकेशन होता है वो हमारे इंटेलेक्ट को हेल्प करता है। ज्ञान बुद्धि को, बुद्धि का मिनिस्टर होता है। डिसीजन आप बुद्धि से लेते हैं, ये सही है या गलत है, पर सही या गलत जानने के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसके बेस पर आप डिसाइड करते हैं। जज बैठा है कि ये इसने गलत काम किया था या नहीं किया था, पर जज के इंटेलेक्ट पर कोई डाउट नहीं है। उसने जो पढ़ाई की है, उसका जो काम है, वो सिर्फ डिस्क्रिमिनेट करना होता है, जजमेंट सुनाना होता है कि ये पनिशेबल है या नहीं है। पर वकीलों की उसको हेल्प की जरूरत पड़ती है, वकील और पुलिसों की, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो वो लाएंगे, जज बेचारा कहां जाएगा, सारा काम जज थोड़े ही करेगा। तो हमारे पर्सनैलिटी में भी जो इनर ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी काम बंटा हुआ होता है। तो जो ज्ञान हम लाते हैं वो उनका रोल मिनिस्टर की तरह होता है, या किसी कोर्ट में वकील या पुलिस ऑफिसरों की तरह होता है, जिनका काम है इन्वेस्टिगेट करना, इन्फॉर्मेशन से इकट्ठा करना। आपकी इन्फॉर्मेशन अगर गलत होंगे तो आपका इंटेलेक्ट भी गलत डिसीजन देता है। आपको अगर बताया गया, जैसे बड़े मजेदार बात देखिए, जब हम छोटे थे, आज से 25-30 साल पहले या 35 साल पहले, 40 साल भी हो सकता है, तो तब एक हवा चली कि भाई मेडिकल फील्ड में ये रिसर्च होकर पता चला है, जो मां का दूध होता है वो बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए, बड़े खराब चीज है। तो क्या? तो ये बाजार का मिल्क पाउडर से पिलाना चाहिए। तो गांव से लेकर शहर तक, गरीब घर से लेकर मिडिल क्लास अब, सब ये लैक्टोजेन पता नहीं क्या क्या दूध की डब्बा घर घर में बेचने लग गए, मां को दूध नहीं पिलाना चाहिए। 20-25 साल के बाद लोगों का पढ़े लिखे लोग आर्ग्यू करने लग जाएंगे, ग्रुप में बैठे देखो मां के दूध में ये खरा पिए ये खरा पिए ये ठीक है। 25-30 के बाद 25-30 साल के बाद मल्टीनेशनल कंपनियों का दूध का डब्बा बेचना पक्का हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रांड पॉपुलर हो गया, अब वो रिसर्च चेंज हो गया कि मां के दूध से बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये बाजार की चीजें ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। अब वही इंटेलेक्चुअल लोग पार्टी में बैठ के आपसे बहस करते हुए मिलेंगे, अगर आप रिकॉर्ड करते तो 25 साल पहले का वही व्यक्ति जो 30 साल पहले ग्रुप में बैठ के बहस करता था मां का दूध कितना खराब है, आज 30 साल के बाद आपसे बहस करता हुआ मिल जाएगा मां का दूध कितना अच्छा है। पॉलिटिक्स में भी ज्यादातर ये बहुत देखा जाता है, इस तरह के इंटेलेक्चुअल जो चर्निंग चलती रहती है, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल चर्निंग मीडिया में भी आप देखेंगे। क्यों? इन्फॉर्मेशन कितना हम लेते हैं, कभी कभी जानबूझ के कम उतने ही इन्फॉर्मेशन लेते हैं जितना हमें शूट करता है, मीडिया वाले भी ऐसे ही करते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हैं। और ये सिर्फ मीडिया वालों का दोष नहीं, ये ह्यूमन नेचर है। इवन यहां भी जैसे आप प्रवचन सुनने आते हैं, हो सकता है आज आपने 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट सुना, जो भी सुना आपने, वो सब बहुत में आप में से बहुत या शायद सारे वो बातें लेकर नहीं जाने वाले जो मैंने बताया, आप वो लेकर के जाते हैं जो आपके मन को अच्छा लगता है, जो आपके नेचर को शूट करता है, या जो आप किसी को ताना मारने के लिए टोंट मारने के लिए यूज कर सकते हैं, वो आपका स्पाउस हो बच्चे हो और कोई हो। तो हम वो पार्ट चुनते हैं जो उतना इंफॉर्मेशन लेते हैं जो हमें ठीक लगता है, मतलब ऑलरेडी हमने अपने ब्लॉक कर रखा है कि उतने ही इंफॉर्मेशन लेंगे, और उतने इंफॉर्मेशन के बेस पर हमारा वो जो इंटेलेक्ट ऑलरेडी जैसा है उसको और ज्यादा मजबूत करते हैं वैसा ही डिसीजन लेने के लिए। पर अगर आप ओपन माइंडेड हैं, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आए मैं लूंगा, वो मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरे प्रीवियस इंफॉर्मेशन के अपोजिट है या उसको फेवर करता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सुनूंगा ओपन माइंडेड। और केवल सुनूंगा नहीं, सुन तो सब रहे हैं, जो सुनने के बाद जो मैं उसको ग्रास्प करता हूं, जो होल्ड करता हूं करूंगा, तो फिर क्या होगा, जब आपके इंफॉर्मेशन में वेरिएशंस होंगे, काउंटर इंफॉर्मेशन भी मिलेगा, तो आपका इंटेलेक्ट ज्यादा सटीक डिसीजन दे सकता है आपको क्या करना चाहिए, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए ड्यूटी है क्या मेरे लिए ड्यूटी नहीं है, क्या मेरे लिए बॉन्डेज है क्या मेरे लिए लिबरेशन है, ये डिसीजन मेकिंग हम अपने इंटेलेक्ट लेवल पर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे कैसे हम बॉन्डेज को भी लिबरेशन समझते हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअली कम इंफॉर्मेशन लेने से, या जिसको फ्रीडम को कैसे हम बॉन्डेज समझते हैं, बॉन्डेज को भी फ्रीडम कभी कभी समझ बैठते हैं, ड्यूटी को जो करना चाहिए उसको हम बुरा समझते हैं कभी कभी, या जो नहीं करना चाहिए उसको ड्यूटी समझ बैठते हैं, ये हर इंसान की घर घर की कहानी है, और इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे जहां हमारा इंटेलेक्ट हमें हेल्प करता है इन चीजों में। अगले संडे को अभी आपको अनाउंसमेंट होगा।